नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को G20 देशों से चुनिंदा हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों को भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। RBI ने कहा कि बाद में UPI के जरिए भुगतान सुविधा का लाभ यहां आने वाले सभी देशों के यात्रियों को मिलेगा। UPI एक भुगतान मंच है जिसके जरिए हम मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं से भी कभी भी अपने बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा भेज और मंगा सकते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा, UPI देश में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए काफी लोकप्रिय बन गया है। इसको देखते हुए अब भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान कारोबारियों को भुगतान के लिए इसके उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा की शुरुआत चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाली G20 देशों के यात्रियों से होगी। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली। G20 दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का मंच है जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2022-2023 की दूसरी छमाही में चालू खाते का घाटा पहली छमाही की तुलना में कम रहेगा। पहली छमाही में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% रहा है। दास ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि आयात घटने से दूसरी छमाही में कैड नीचे आएगा। चालू खाते का घाटा पहली छमाही में GDP का 3.3% रहा है, जो इससे एक साल पहले की समान अवधि के 0.2% से काफी अधिक है। दास ने कहा, साल 2022-2023 की तीसरी तिमाही में स्थिति सुधरी है। जिंसों के दाम घटने से आयात नीचे आया है, इससे वस्तुओं का व्यापार घाटा कम हुआ है। दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सेवाओं का निर्यात 24.9% बढ़ा है। सॉफ्टवेयर, कारोबारी और यात्रा सेवाओं में वृद्धि से कुल सेवा निर्यात बढ़ा है। विभिन्न कारोबार से जुड़े GVK ग्रुप ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसके ऊपर मुंबई हवाई अड्डे में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में समूह पर दबाव होने का आरोप लगाया था। उन्होंने संसद में कहा था कि भारत सरकार ने CBI और ED जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर GVK से मुंबई हवाई अड्डा लेकर उसे अडानी को सौंप दिया। गांधी के इस आरोप के एक दिन बाद GVK ने इस मामले में ये बयान दिया। GVK के प्रवक्ता ने PTI भाषा से कहा, मुंबई हवाई अड्डे में हिस्सेदारी अडानी को बेचने का फैसला प्रबंधन ने लिया था। इसके लिए हम पर कोई बाहरी दबाव नहीं डाला गया। अमेरिका की वित्तीय शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर लेन देन में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने इस्पात कंपनी टाटा स्टील के पोर्ट टालबोट स्थित संयंत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए मांगे गए वित्तीय पैकेज पर अपनी तरफ से एक अलग पैकेज की पेशकश की। टाटा स्टील के वैश्विक CEO एवं प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार की ये पेशकश कंपनी की तरफ से मांगे गए पैकेज की तुलना में काफी कम है। हालांकि उन्होंने इस जवाबी पेशकश का कोई ब्यौरा नहीं दिया। टाटा स्टील के पास ब्रिटेन के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र का स्वामित्व है। ये संयंत्र साउथ वेल्स के पोर्ट टालबोट में स्थित है। देश भर में कंपनी के साथ करीब 8,000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील UK ने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि उसे संयंत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए पैकेज दिया जाए। नरेंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में PTI भाषा से कहा कि ब्रिटिश सरकार से इस बारे में एक जवाबी पैकेज की पेशकश की है, लेकिन वह मांगी गई राशि से कम है। ऐसी स्थिति में कंपनी को अपने ब्रिटिश कारोबार को कार्बन मुक्त करने की योजना पर नए सिरे से सोचना होगा। आम आदमी पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी कि रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हुई है और वह 0.25% बढ़कर 6.50% हुआ, जिसके चलते अब लोन की किश्तें महंगी हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर RBI के अनुमान के मुताबिक 2023-24 के रियल GDP ग्रोथ 6.4% रहेगी, जो Q1 में 7.8%, Q2 में 6.2%, Q3 में 6% और Q4 में 5.8% अनुमानित है। RBI ने बुधवार को रेपो दर में 25 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी की। रेपो रेट वह रेट होता है जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। पेशेवरों के नेटवर्क लिंक्डइन ने भारत में 10 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 3 साल के दौरान भारत में लिंक्डइन के सदस्यों की संख्या 56% बढ़ी है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत लिंक्डइन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। लिंक्डइन ने बुधवार को बयान में कहा, भारत में उसके सदस्यों में सबसे अधिक हिस्सा सॉफ्टवेयर और IT क्षेत्र का है। इसके बाद विनिर्माण, कॉरपोरेट सेवाएं, वित्त और शिक्षा उद्योग का नंबर आता है। बयान में कहा गया कि सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि से पता चलता है कि कैसे लिंक्डइन भारत में पेशेवरों के लिए एक अनिवार्य मंच बन गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।